بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متر، زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ شروتاؤں، آج قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی آیت کرمانک 14 اور 15 کی تلاوت کر کے آج کے کارکرم کی شوبھا بڑھائی ہے قاری قاسم رضی نے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد۔ صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، لوگوں کے لیے پتنیوں، سنتانوں، سونے چاندی سے بٹورے ہوئے دھن، اچھے گھوڑوں، مویشیوں تتھا کھیتیوں سے پریم کو اچھا دکھایا گیا ہے۔ ये सब सांसारिक जीवन की नश्वर वस्तुएं हैं और अल्लाह के पास अच्छा प्रतिफल है। हे पैगंबर, कह दीजिए कि मैं तुम्हें इससे अच्छी वस्तुओं की खबर देता हूँ। जो लोग अल्लाह से डरते हैं उनके लिए अल्लाह के पास ऐसे बाग हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं और वहाँ वे सदैव रहेंगे। उनकी पत्नियां होंगी और अल्लाह की प्रसन्नता होगी और अल्लाह अपने बंदों को देखने वाला है।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। आज शनिवार है, मुर्दाद की 9, ज़िलहिज्जा की 20 और जुलाई की 31 तारीख। श्रोताओ, हमारा ये कार्यक्रम आप शार्टवे में 31 मीटर बैंड बराबर 9510 किलो हर्ट्ज पर सुन रहे हैं। हमें आशा है कि हमारा आज का प्रसारण भी आपको अवश्य पसंद आएगा। पत्र व्यवहार के लिए हमारे पते नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.iribi.ir, जबकि ताज़ा समाचारों से अवगत होने के लिए हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। श्रोताओ, हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा नोट कर लें। सदा की भांति आप सबसे पहले समाचार सुनेंगे, उसके पश्चात राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम होगा, उसके पश्चात आप इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हमारा विशेष कार्यक्रम सुनेंगे और सभा का अंतिम और साप्ताहिक कार्यक्रम होगा ईरान भ्रमण। श्रोताओ, यह तो थी हमारी आज के कार्यक्रम की रूपरेखा और अब आप कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से समाचार सुनेंगे। अब आप रेडियो तेहरान से समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान ने कहा है कि अमेरिका मिसाइल ताकत और क्षेत्रीय प्रभाव पर वार करने के लिए परमाणु समझौते को हाईजैक करना चाहता है। ईरान ने कहा है कि वो अफगानिस्तान में शांति व सुरक्षा चाहता है। इराकी सांसदों ने कहा है कि अमेरिका का निकलना बहुत जरूरी है, वो आतंकवादियों को हथियार देता है। यूरोपीय सांसदों ने भारत नियंत्रित कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति पर चिंता जताई है। और अब आप मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेदी से विस्तार से समाचार सुनिए।
ईरान की मिसाइल ताकत और क्षेत्रीय प्रभाव पर वार करने के लिए परमाणु समझौते को अमेरिका हाईजैक करना चाहता है। वियना में परमाणु ऊर्जा की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी IAEA में ईरानी राजदूत ने कहा कि अमेरिका मिसाइल और क्षेत्र के लिए परमाणु समझौते को बंधक बनाना चाहता है। काजिम गरीबाबादी ने कहा कि अमेरिका और पश्चिम ने हालिया परमाणु वार्ता में दर्शा दिया है कि मिसाइल और क्षेत्रीय समस्याओं व मामलों जैसे असंबंधित विषयों तक पहुंचने के लिए वे अब भी परमाणु समझौते को एक पुल के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका दावा करता है कि वो परमाणु समझौते में वापस आने के लिए तैयार है और परमाणु समझौते के खिलाफ जो प्रतिबंध हैं उन्हें उठाने के लिए तैयार है, परंतु वार्ता में उसका ये व्यवहार साबित नहीं होता है। श्री गरीबाबादी के कथनानुसार अमेरिका प्रचलित हथियारों के संबंध में प्रतिबंध को हटाने के लिए तैयार नहीं हुआ, जबकि सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव नंबर 2231 और परमाणु समझौते से ये प्रतिबंध पूरी तरह विरोधाभास रखता है और एक प्रकार से परमाणु समझौते में वापसी हेतु अमेरिकी दावे से भी विरोधाभास रखता है। ईरानी राजदूत ने इसी प्रकार वियना में कहा कि ये कार्रवाइयां इस बात की सूचक हैं कि अमेरिका की नई सरकार भी पहले वाली सरकार की ईरान के खिलाफ अधिकतम दबाव की नीति पर अमल कर रही है।
ईरान की संसद मजलिस शुरा इस्लामी में विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के एक सदस्य ने कहा है कि ईरान वार्ता के माध्यम से और अफगानिस्तान में प्रभावी धड़ों को एक दूसरे के निकट करके सदैव इस देश में शांति व सुरक्षा स्थापित किए जाने का पक्षधर रहा है। زنور نے افغانستان کے حالیہ وادوں کے بارے میں اسلامی گنتنتر ایران کے درشٹکوڑوں کے بارے میں کہا کہ دسیوں سال سے افغانستان کو وادوں اور لڑائیوں کا سامنا رہا ہے اور یہی استھتی اب بھی جاری ہے۔ انہوں نے افغانستان میں شانتی و سرکشا کی استھاپنا کو ایران کے لیے بہت مہتوپورن بتایا اور کہا کہ افغانستان میں شانتی و سرکشا اور اسی پرکار جنگ و استھرتا کا سیدھے وشیش کر ایران کی پوروی سیماؤں پر اثر۔ ایران کی سنسد میں ودیش نیتی اور راشٹریہ سرکشا آیوگ کے سدسیہ نے اسی پرکار کہا کہ ایران کا پریاس یہ ہے کہ افغان سرکار اور دوسرا آنترک دھڑوں کو ایک دوسرے سے نکٹ کر کے افغانستان میں شانتی و سرکشا استھاپت کرنے میں سہایتا کرے۔
افغانستان کے پشمی پرانت ہرات میں سنیکت راشٹر سنگھ کے کاریالے پر حملے میں ایک سرکشا کرمی ہتاہت ہو گیا۔ افغانستان کی سرکاری سماچار ایجنسی آوا کی رپورٹ کے انوسار سنیکت راشٹر سنگھ کے مشن ادھیکاری کا کہنا ہے کہ سنیکت راشٹر سنگھ کے کاریالے پر ہونے والے حملے میں ایک سرکشا کرمی ہتاہت اور کئی انیہ گھائل ہو گئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ طالبان کے ہرات پرانت میں گھسنے کے بعد کچھ گھنٹے بعد راکٹ اور ہتھکولوں سے حملے کیے گئے اور افغانستان میں سنیکت راشٹر سنگھ کے مشن کے پرانتی ہیڈ کوارٹر کے نکٹ افغان سرکشا بلوں اور طالبان میں زبردست جھڑپیں ہوئیں۔ افغانستان کے معاملے میں سنیکت راشٹر سنگھ کے وشیش دوت نے کہا کہ سنیکت راشٹر سنگھ کی عمارت پر کیا گیا یہ حملہ بہت ہی دکھد ہے اور ہم اس کی کڑے شبدوں میں نندا کرتے ہیں۔ ابھی تک یہ ज्ञात नहीं हो सका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय पर हमला किसने किया।
कुछ इराकी सांसदों ने कहा है कि अमेरिका आतंकवादी गुटों का समर्थन करता है और बल देकर कहा है कि इराकी संसद से अमेरिकी सैनिकों के निष्कासन के संबंध में जो प्रस्ताव पारित हुआ है उस पर अमल अनिवार्य है। समाचार एजेंसी बगदादुल योम की रिपोर्ट के अनुसार इराकी सांसद सामिर زویان نے کہا ہے کہ عراق سے امریکی سینکوں کے نشکاسن کے سمبندھ میں پارت ہونے والے پرستاؤ کی کسی بھی ستھی میں اندیکھی نہیں کی جا سکتی۔ اسی پرکار دوسرے عراقی سانسد علی الخدران نے بھی کہا ہے کہ امریکہ شتر راشٹروں کو یدھ اور ہنسا کی آگ میں جھونکنا چاہتا ہے اور اسی کارن وہ آدھنکتم ہتھیاروں کو آتنکوادی تتوں کو دیتا ہے۔ عراقی سانسدوں کا بیان ایسی استھتی میں سامنے آ رہا ہے جب عراقی پردھان منتری مصطفیٰ القاظمی نے اپنی حالیہ امریکہ یاترا کے دوران ایسے سمجھوتے پر ہستاکشر کیا ہے جس کے انترگت جاری ورش کے انت تک امریکی سینک عراق سے نکل جائیں گے، پرنتو ان میں سے کچھ سینک عراقی سینکوں کو سینیہ پرشکشن دینے جیسے بہانوں سے عراق میں بنے رہیں گے۔ اس سمجھوتے کے بعد عراق کے پرتیرودھک گٹھوں نے گھوشنا کی ہے کہ وہ کسی بھی بہانے سے عراق میں امریکی سینکوں کی اپستھتی کے ورودھی ہیں اور بل دے کر کہا ہے کہ پوری طرح امریکی سینکوں کو عراق سے باہر نکلنا ہوگا۔
یہ سماچار آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں۔ آتنکوادی گٹ داعش نے عراق کے صلاح الدین پرانت کے دکشن میں حملہ کر کے 7 لوگوں کو ہتاہت اور 17 انیہ کو گھائل کر دیا۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے انوسار آتنکوادی گٹ داعش نے دکشنی صلاح الدین پرانت میں ایک شوک سبھا پر حملہ کر دیا جس میں 20 سے ادھک لوگ ہتاہت و گھائل ہوئے ہیں۔ موازین نیوز نے رپورٹ دی ہے کہ دکشنی صلاح الدین پرانت کے یسریب شہر میں ایک یوا ندی میں ڈوب کر مر گیا جس کی شوک سبھا کا آیوجن ہو رہا تھا اور داعش نے اس شوک سبھا پر حملہ کر دیا جس سے 7 لوگ ہتاہت اور 17 انیہ گھائل ہو گئے۔ ہتاہتوں اور گھائلوں میں عام ناگرک اور سرکشا کرمی بھی شامل ہیں۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آتنکوادی گٹ داعش کے اسپائنروں نے یسریب شہر کے البو جیلی چھیتر میں ایک شوک سبھا کی رکشا پر تعینات سرکشا بلوں کی گاڑی پر فائرنگ کر دی جس کے بعد سرکشا بلوں نے جوابی کارروائی کی اور آتنکوادیوں نے AK-47 سے شوک سبھا میں شامل لوگوں پر فائرنگ کر دی جس کی وجہ سے ہتاہت ہونے والوں کی سنکھیا بڑھ گئی۔ عراقی سرکشا بل کے جوان حملہور داعش کے آتنکوادیوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن کر رہی ہیں۔
یورپی سانسدوں نے بھارت نینترت کشمیر میں مانوادھیکاروں کی استھتی پر گمبھیر چنتا جتائی ہے جس کا پاکستان نے سواگت کیا ہے۔ پاکستانی سوتروں کی رپورٹ کے انوسار یورپی سانسدوں نے یورپی کمیشن کو ایک پتر دیا ہے جس میں مانواادھیکار کی استھتی پر گمبھیر چنتا جتائی ہے اور بل دے کر کہا ہے کہ وہ اس معاملے پر آواز اٹھائے اور کارروائی کرے۔ پاکستان نے اس قدم و درشٹی کون کا سواگت کیا ہے۔ یورپی کمیشن کے ادھیکش ارسولا وون ڈیریلین اور اپادھیکش جوسف بوریل کو سمبودھت کر کے پتر میں کہا گیا ہے کہ انتراشٹریہ مانواادھیکار اور بنیادی آزادی کے انوسار قانون کے چیئرمین کو بھارت نیتر کشمیر میں مانواادھیکاروں کے ہنن سے پربھاوت لوگوں کے لیے ضرور آواز اٹھانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ماننا ہے کہ یورپی سنگھ کو انتراشٹریہ سمودائے کی اور سے کشمیریوں کے لیے کیے گئے وعدوں پر عمل کروانے اور راشٹر سنگھ کے پرستاؤں پر عمل کرانے کے لیے بھارت اور پاکستان کے ساتھ اپنی پوری شکتی اور سمبھاونا کا پریوگ کرنا چاہیے۔
بھارتیہ سیما سرکشا بل بی ایس ایف کے جوانوں نے دو گھسپیٹھیوں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ پراپت رپورٹ کے انوسار بی ایس ایف نے دعویٰ کیا ہے کہ شکروار رات 11 بجے ترن تارن ضلع کے بھیکی بنڈ سب ڈویژن کے خلرا گاؤں کے پاس پاکستان سے بھارتی سیما میں گھسے دو گھسپیٹھیوں کو مار گرا گیا۔ آدھیکارک سوتروں نے بتایا ہے کہ بی ایس ایف کی 103 بٹالین کے جوانوں نے تھیہ کلا سیما چوکی کے پاس بھارتی سیما میں کٹیلے تاروں کی باڑ اور زیرو لائن کے بیچ رات 11 بجے کے قریب سندگدھ گتیویدھی دیکھی۔ پکڑے جانے والے گھسپیٹھیوں نے آتم سمرپن کرنے کے بجائے پاکستان کی اور بھاگنے کی کوشش کی، جس کے بعد بی ایس ایف کے جوانوں نے گولیاں چلا دیں۔ دونوں گھسپیٹھیوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ سینا کا کہنا ہے کہ آپریشن کے بعد علاقے میں تلاشی ابھیان جاری ہے۔ دوسری اور جموں کشمیر کے سیماورتی راجوری ضلع میں شکتیشالی آئی ای ڈی کا سمے رہتے پتہ لگنے اور اسے نشکریہ کر دینے سے شنیوار کو ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ ادھیکاریوں نے بتایا ہے کہ جموں راجوری راشٹریہ راجمارگ پر بیتھونی دلوگرا میں ایک پلیا کے نیچے سندگدھ چھاپہ ماروں دوارا وسفوٹک لگایا ہوا ملا، جسے سینا کے بم نشکریہ دستے نے صبح 9:10 پر نشکریہ کر دیا۔
بھارت 1 اگست کو سنیکت راشٹر سرکشا پریشد کی ادھیکشتا سنبھالے گا۔ بھارت کے راجدوت ٹی ایس تریمورتی نے یو این مہا سبھا پرمکھ کو بھارت کی ادھیکشتا کے دوران ہونے والی مکھیہ گتیویدھیوں سے اوگت کرایا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سمندری سرکشا، شانتی استھاپنا اور آتنکواد جیسے ایجنڈے کو بھارت مضبوطی سے اٹھا سکتا ہے۔ سنیکت راشٹر میں بھارت کے سائی پرتندھی راجدوت ٹی ایس تریمورتی نے 15 راشٹروں کے شکتیشالی سنیکت راشٹر نکائے کی بھارت دوارا ادھیکشتا سنبھالے جانے کی پورو سندھیا پر ایک ویڈیو سندیش میں کہا کہ ہمارے لیے اسی ماہ میں سرکشا پریشد کی ادھیکشتا سنبھالنا وشیش سمان کی بات ہے، جس ماہ ہم اپنا 75واں سوتنتر دیوس منا رہے ہیں۔ سنیکت راشٹر سرکشا پریشد میں بطور ادھیکش بھارت کا پہلا کاریا دیوس سوموار یعنی 2 اگست کو ہوگا۔ تریمورتی مہینے بھر کے لیے پریشد کے کاریکرموں پر سنیکت راشٹر مکھیالے میں مشرت سنواداتا سمیلن کریں گے، یعنی کچھ لوگ وہاں موجود ہوں گے جبکہ انیہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے جڑ سکتے ہیں۔
امریکہ کے ہائپر سپر سونک میزائل کا پریکشن ایک بار پھر ناکام ہو گیا۔ پارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے انوسار امریکہ کو ایک بار پھر ہائپر سپر سونک میزائل کے پریکشن کے وفل ہونے کا منہ دیکھنا پڑا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکی ہائپر سپر سونک میزائل B-52 بمبار ویمان سے فائر کی گئی، لیکن امریکی وایو سینا کو دوسری بار اس میں وفلتا کا منہ دیکھنا پڑا۔
یمن کی سشستر سینا نے اعلان کیا ہے کہ الویزا پرانت میں تکفیری آتنکوادیوں کے ورودھ نصر المبین آپریشن کے دوسرے چرن میں کئی انیہ نئے علاقوں کو آزاد کرا لیا گیا ہے اور اس آپریشن کے دوران تکفیری آتنکوادیوں کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے انتراشٹریہ سماچار سماپت ہوئے۔
یہ پرسارن آپ ریڈیو تہران کی हिंदी सेवा से सुन रहे हैं।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा लेकर मैं सैयद मीसम आपकी सेवा में हाजिर हूं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे दुनिया भर में बड़े पैमाने पर इसराइली स्पाईवेयर के जरिए होने वाले जासूसी कांड की। उसके बाद हम अमेरिका में तबाही मचाने वाले डेल्टा वायरस का जायजा लेंगे और आखिर में भारत का रुख करेंगे, जहां से हमारे संवाददाता ताजा स्थिति पर रोशनी डालेंगे। दुनिया भर में सरकारी सतह पर जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इसराइली स्पाईवेयर पेगासस के बारे में लंदन से प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट, अख्तर अब्बास की जबानी।
Pegasus is one of the powerful bits of spyware ever.
जब ये खुलासा हुआ कि इसराइली स्पाईवेयर के जरिए बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और यहाँ तक कि पश्चिमी राजनेताओं को निशाना बनाया गया है, तो अमरीका और यूरोप में 17 संचार माध्यमों ने संक्षिप्त रूप से ही इस घटना पर प्रतिक्रिया जाहिर की। विल्सिल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडन का इस बारे में कहना है,
This is everywhere. This is an...
ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसराइली स्पाईवेयर के खरीदार मशहूर लोग हैं, इसीलिए मीडिया में इसकी चर्चा हुई। ये कंपनियां वायरस बनाती हैं, उसे फैलाती हैं और उनकी संख्या भी ज्यादा करती हैं। अब ये बात स्पष्ट हो गई है कि इसराइली स्पाईवेयर पेगासस ने एंड्रॉयड और एप्पल के आईफोन मोबाइलों को हैक किया है, जिससे कुछ जासूसी एजेंसियों और सरकारों ने अपने लक्ष्यों के मैसेज, तस्वीरों और टेलीफोन कॉल्स तक पहुंच के अलावा माइक्रोफोन को खुफिया तौर पर सक्रिय किया है और उससे जासूसी की।
Pegasus is incredibly invasive tech.
Pegasus पिछले दशक में विकसित होने वाली तकनीक का प्रयोग करता है। इस इसराइली स्पाईवेयर के इस्तेमाल से जासूसी एजेंसियां लोगों के फोन हैक करती हैं और उनसे सूचनाएं चुरा लेती हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और फिलिस्तीनियों के अधिकारों की रक्षा करने वालों को इस स्पाईवेयर से शिकार बनाया गया। पश्चिमी सरकारों ने इतने बड़े पैमाने पर होने वाली जासूसी से अपनी आंखें मूंद रखी हैं।
The reaction in the United States and the European Union.
NSO के स्पाईवेयर के जरिए बड़े पैमाने पर जासूसी के बावजूद अमरीका और यूरोपीय संघ की प्रतिक्रिया इस बारे में बहुत कमजोर थी। अगर इसराइल के बजाय किसी चीनी कंपनी ने ये जासूसी की होती, तो उस कंपनी पर प्रतिबंधों की मांग आसमान को छू रही होती, लेकिन क्योंकि पश्चिम में इसराइल की आलोचना एक अपराध है, इसीलिए इसराइल पर प्रतिबंध की कोई बात नहीं कर रहा है। ब्रिटेन में कुछ संचार माध्यमों ने हाल ही में खुलासा किया है कि देश में 108 पत्रकारों की इसराइली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए महीनों से जासूसी हो रही है, जिसे NSO ने कुछ देशों की सरकारों को बेचा था। मुश्तबा कासिम जादे, IRIB न्यूज, लंदन।
क्या अमेरिका में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट की तबाही एक वास्तविकता है या सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडा? अमेरिका में सत्ता और विपक्ष के राजनेताओं के बीच कोरोना वायरस को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पेश है न्यूयॉर्क स्थित हमारे संवाददाता की रिपोर्ट, अहमद अब्बास की जबानी।
कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट अमेरिका के अंदर बुरी तरह फैल गया है। डेल्टा ने तबाही मचा रखी है, क्योंकि बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन और वैक्सीन लगाने के लिए लोगों के प्रोत्साहन के बावजूद किसी न किसी वजह से लोगों की एक बड़ी संख्या वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं है। इसका एक उदाहरण CDC की वो गाइडलाइन है, जिसमें कहा गया है कि वैक्सीनेटेड लोगों को भी मास्क लगाना जरूरी है। टेड क्रूज, टेक्सास राज्य के रिपब्लिकन सेनेटर,
100% पॉलिटिक्स,
ये 100% राजनीति है। اس کا وگیان سے کوئی لینا دینا نہیں، اس سے ڈیموکریٹس کے پاکھنڈ کا پتہ چلتا ہے جو امریکی ناگرکوں کی آزادی کو سیمت اور نینترت کرنا چاہتے ہیں، یہ ٹیڈ کروز کا کہنا ہے۔ امریکہ میں روگ نینترن کیندر کی ایک آنترک رپورٹ میں کہ جو میڈیا میں لیک ہو گئی، الیکھ کیا گیا کہ کورونا کا ڈیلٹا ویریئنٹ چکن پاکس کی اس طرح پھیلتا ہے، وہ ویکسینیٹڈ لوگوں سے ان لوگوں تک پھیل جاتا ہے جنہوں نے ابھی ٹیکہ نہیں لگوایا۔ اس کے پھیلاؤ کا پرتیشت اتنا زیادہ ہے کہ ویکسین سے حاصل ہونے والے سرکشا کوچ کو بھی توڑ سکتا ہے، لیکن اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ویکسینیشن کافی حد تک موت کے خطرے کو کم کر دیتا ہے۔ ڈیلٹا میں پربھاوت ویکتی کے سنکرمت ہونے کے لیے وائرس کے کم کن بھی کافی ہوتے ہیں، بیمار کی حالت بگڑنے اور اسپتال میں بھرتی ہونے کی سمبھاونا بھی زیادہ رہتی ہے۔ سنکرمت لوگوں میں وائرس کی کافی ماترا موجود رہتی ہے، اسی لیے اب 13 دن کے بجائے لوگوں کو 18 دنوں کے لیے کوارنٹائن کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے امریکہ میں روگ نینترن کیندر کی گائیڈ لائن یہی ہے کہ ماسک لگانا چاہیے۔ نیو یارک سے IRIB کے لیے کامران نجف زادے کی رپورٹ۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش، کاریکرم راجنیتک چرچا۔
اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا۔ جموں کشمیر میں الگاوادیوں اور سرکشا بلوں کے بیچ مڑ بھیڑ، اور نئی دلی کے آشیرواد سے ایک نئے راجنیتک دل کے ابھرنے کے بارے میں بیورا دے رہے ہیں شری نگر سے سپت حسن۔
جموں کشمیر پولیس کے IG وجے کمار نے کہا ہے کہ دکشنی کشمیر میں سرکشا بلوں کے ساتھ ایک زبردست مڑ بھیڑ میں جیش محمد کا الگاوادی کمانڈر الوی عرف لمبو اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ہتاحت ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سرکشا بلوں کے لیے بہت بڑی اپلبدھی ہے۔ اجے کمار نے سمواددتا سمیلن کو سمبوجت کرتے ہوئے کہا کہ جو پلوامہ میں سرکشا بلوں پر آتم گاتی آکرمن ہوا تھا، اس کا ماسٹر مائنڈ بھی یہی تھا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 7 ورشوں سے یہ جموں کشمیر میں کافی سکریہ تھا اور سرکشا بلوں کو اس کی شدت سے تلاش تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی اسے ٹریس آؤٹ کرنے کے لیے سرکشا بلوں نے کافی زیادہ آپریشن انجام دیے تھے، پرنتو وہ اس میں سفلتا پراپت نہیں کر سکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سرکشا بلوں کے لیے بہت بڑی اپلبدھی ہے اور اس میں استھانیہ لوگوں کا بڑا سہیوگ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہتاحت ہوا الگاوادی کمانڈر جیش محمد کے اظہر محمود کی فیملی سے ہے اور اس سے اس سنگٹھن کو کافی زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکشا بلوں نے الگاوادیوں کے ورودھ میں جو ابھیان آرمبھ کیا ہے وہ شدت کے ساتھ جاری رہے گا۔ اس بیچ جموں کشمیر اپنی پارٹی میں آج ایک اور بدھ پورو ودھائک محمد شاہد تانترے شامل ہوا ہے۔ پارٹی مکھیالے پر پترکاروں کے ساتھ وارتا کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2019 5 اگست کو جو گھٹنا گھٹی اس میں مودی سے زیادہ ان کے انوسار نیشنل کانفرنس کا ہاتھ ہے۔
اس 370 کو ختم کرنے میں مودی جی سے زیادہ ہاتھ نیشنل کانفرنس کا ہے اور باقی پارٹیوں کا ہے جنہوں نے 70 سال۔
انہوں نے کہا کہ کشمیری لوگوں کو دھوکہ دیا گیا اور 370 کو لے کر بھی اب راجنیتی ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنی پارٹی میں شمولیت اختیار کرتے وقت یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پارٹی لوگوں کے سامنے سچ بول رہی ہے، اس لیے انہوں نے اس میں شمولیت اختیار کی۔ یہاں یہ بات الیکھنی ہے کہ جموں کشمیر اپنی پارٹی میں آئے دیوس لوگ شامل ہو رہے ہیں، اور راجنیتک پنڈتوں کا کہنا ہے کہ نئی دہلی کی طرف سے جو اشارے مل رہے ہیں اس سے یہ صاف سنکیت نظر آ رہے ہیں کہ اس پارٹی کو نئی دہلی کا آشیرواد حاصل ہے۔ سبت محمد حسن، ریڈیو تہران، سری نگر۔
اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا سماپت ہوئی۔ ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। दोस्तों, ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए। वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के शुभ जन्म दिवस के अवसर पर अब प्रस्तुत है एक विशेष कार्यक्रम, और अंतिम कार्यक्रम होगा ईरान भ्रमण।
दोस्तों, इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर रेडियो तेहरान आप सबकी सेवा में हार्दिक बधाई प्रस्तुत करता है। मोहम्मद मेहदी और स्वाति का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, लोगों के सही मार्गदर्शन में पैगंबर इस्लाम के पवित्र परिजनों और महापुरुषों की भूमिका हमेशा से ही प्रशंसनीय रही है। इमामों ने पापों और बुराइयों से बचते हुए एक सफल जीवन व्यतीत किया। उन्होंने लोगों को हमेशा ही भ्रष्टता से दूर रखा। संसार में ज्ञान और नैतिकता उन्हीं के माध्यम से फैली। इन महान लोगों ने ही ईश्वरीय पहचान का रास्ता बताया। इस प्रकार के महान लोगों का शुभ जन्म दिवस एक प्रकार से मानव जीवन में प्रकाश के फैलने के अर्थ में है। जो भी इंसान इनका अनुसरण करेगा वह निश्चित रूप से संसार में सफल रहेगा। आज इमाम मूसा काजिम अलैहि सलाम का शुभ जन्म दिवस है। वे पैगंबर इस्लाम के परपौत्र थे। इमाम मूसा काजिम अलैहि सलाम के ज्ञान का यह आलम था कि उनके पिता इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम ने उनके बारे में कहा था कि मेरे बेटे मूसा काजिम के भीतर ज्ञान इतना अधिक है कि अगर पूरे कुरान के बारे में उनसे कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए तो वह ऐसे तार्किक जवाब देगा जिससे सुनने वाला संतुष्ट हो जाएगा। वह ज्ञान का केंद्र है।
ऐतिहासिक प्रमाण इस बात के सूचक हैं कि इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम ने अन्य धर्मों के धर्मगुरुओं के साथ बैठकर जो शास्त्रार्थ किए थे उनके कारण बहुत से अन्य धर्म के लोगों ने स्वेच्छा से इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इब्ने शहर आशुब मनाकिब में इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के बारे में एक कथन पेश करते हैं। वे लिखते हैं कि एक बार मूसा बिन जाफर अलैहिस्सलाम शाम के किसी गांव में गए। वे अजनबी के रूप में गए और कोई उनको पहचानता नहीं था। वहां पर वे एक गुफा के पास पहुंचे जहां पर कोई बहुत बड़ा धर्मगुरु रहता था। वो साल में केवल एक दिन गुफा से बाहर आता था और अपने अनुयायियों को उपदेश दिया करता था। संयोग से ये वही दिन था। उपदेश देते समय जैसे ही उस धर्मगुरु की नजर इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम पर पड़ी तो थोड़ी देर के लिए वो स्तब्ध रह गया। उसने महसूस किया कि ये कोई महान व्यक्ति है। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम को संबोधित करते हुए उस धर्मगुरु ने कहा कि आप अजनबी लगते हैं। इमाम ने कहा हाँ। उसने पूछा कि क्या तुम हमारे लोगों में से हो या दूसरों में से। इमाम ने कहा मैं तुम में से नहीं हूँ। उसने पूछा कि क्या तुम मोहम्मद के मानने वालों में से हो। इमाम ने जवाब में कहा हाँ। इसके बाद उस धर्मगुरु ने कहा कि क्या तुम अज्ञानियों में से हो या ज्ञानियों में से। इमाम ने कहा कि मैं अज्ञानी नहीं हूँ। जब उसे ये पता चल गया कि वे मुसलमान हैं और अज्ञानी नहीं हैं, तो उसने पूछा कि बताओ कि कैसे संभव है कि तूबा की जड़ें अली के घर में हैं और तुम ये मानते हो कि इसकी शाखाएं सारे घरों में मौजूद हैं। इमाम ने जवाब में कहा कि ये सूरज की भांति है। उसका प्रकाश पूरी दुनिया में मौजूद है जबकि वह स्वयं आसमान में है। उस धर्म गुरु ने अगला सवाल ये किया कि ये कैसे संभव है कि स्वर्ग के रहने वाले वहां की नेमतों से जितना भी लाभ उठाएं वो कम नहीं होती। इमाम ने इसके जवाब में कहा कि ये चिराग की तरह है। एक चिराग से चाहे जितने भी चिराग जलाओ पहले चिराग की रोशनी कम नहीं होती। उसने फिर पूछा कि क्या स्वर्ग में भी साया फैला हुआ है। इमाम ने कहा सूरज के निकलने से पहले पूरा स्वर्ग में साया फैला रहता है। आपने कहा कि इसकी पुष्टि पवित्र कुरान से भी होती है जहां पर कहा गया है कि ये कैसे संभव है कि स्वर्ग वालों के पास सेवक है। ये सेवक उनके लिए ہر وہ چیز لاتے ہیں جس کی ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے کہا کہ منش کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے شریر کے بھاگ اس سے اوگت ہو جاتے ہیں اور وہ منش کی اچھا کے انسار کام کرتے ہیں۔ اب اس دھرم گرو نے پوچھا کہ سورگ کی چابی سونے کی بنی ہوئی ہے یا پھر چاندی سے بنی ہوئی ہے۔ امام نے کہا کہ سورگ کی چابی منش کی زبان ہے جو یہ کہتی ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ امام کے جوابوں سے پربھاوت ہو کر وہ دھرم گرو اپنے سارے ہی انویائیوں کے ساتھ اسی سمے مسلمان ہو گیا۔
کاظم اور باب الحوائج کے اپناموں سے خیاتی پراپت امام موسیٰ بن جعفر شیعوں کے ساتویں امام ہیں۔ آپ کا جنم سن 128 ہجری قمری میں اس سمے ہوا تھا جب ستا امویوں کے ہاتھوں سے عباسیوں کے ہاتھوں میں پہنچ رہی تھی۔ سن 148 ہجری قمری میں اپنے پتا امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایشوریہ مارگ درشن کا کام آپ کے کاندھوں پر آ گیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے 35 ورشوں تک لوگوں کا مارگ درشن کیا۔ آپ کے کال میں منصور، ہادی، مہدی اور ہارون خلیفہ گزرے۔ امام کی امامت کا دور آپ کے جیون کال کے اتی مہتوپورن کال میں سے ہے۔ آپ کی امامت کے دور میں بنی عباس کے دو شاسکوں منصور اور ہارون نے جیون گزارا، جبکہ مہدی اور ہادی نامک اتیاچاری شاسکوں نے اپنے اتیاچاروں کو نہیں روکا۔ عباسیوں کے کال میں خراسان، موصل، دیلمان، جرجان، نصیبین، مصر، آذربائیجان تتھا آرمینیا میں بہت سے ودروہ کا دمن کر دیا گیا۔ اسلامی کال میں پورا پشچم اور اتر کی اور اسلام تیزی سے پھیلا۔ اس کام نے عباسیوں کی ستا کو ادھک سے ادھک مضبوط کرنے کا کام کیا۔
اس دوران بہت سی وچار دھارائیں مسلمانوں کے بیچ پھیلنے لگیں، جس کے کارن لوگوں کے بھیتر ایک پرکار کا بھے پنپنے لگا۔ اس سے لوگوں کو صحیح باتیں بتانے میں دشواریاں آنے لگیں، کیونکہ اس کے مادھیم سے شاسک لوگوں کو گمراہ کر کے سچے دھرم سے دور کر رہے تھے۔ تتکالین شاسک اپنی ستا کو بچانے اور اس کو سرکشت کرنے کے لیے کویتاؤں، ساہت اور پرچار کے سارے مادھیموں کا پریوگ کر رہے تھے۔ ایسے گھٹن بھرے ماحول میں سچائی پر بنے رہنا بہت کٹھن ہو چکا تھا۔ ان حالات میں اتھک پریاس ہی وہ چیز باقی رہ گئی تھی جو اہل بیت علیہ السلام کے سنگھرش اور ویچارک آندولن کو آگے بڑھا سکتی تھی۔ اس کال کے واتاورن کے بارے میں جان کر پتہ چلتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کن حالات میں ایشوریہ مارگ درشن کے دائتو کو پوری نشٹھا کے ساتھ آگے بڑھایا۔ اسلام میں دھرم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے توحید ارتھات ایک ایشوروات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہی کارن ہے کہ ہم جب مہاپرشوں کے جیون کا ادھیان کرتے ہیں تو پاتے ہیں کہ ان کا مکھ لکش ایشوریہ دھرم کو نیائے کے ساتھ پھیلانا رہا ہے۔
اس بارے میں پوتر قرآن کہتا ہے کہ دھرم کا پرچار اور ایشور کی ستا کی استھاپنا ہی مہاپرشوں کے جیون کا لکش رہا ہے۔ اس آدھار پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جیون کال میں گھٹنے والی بہت سی گھٹناؤں کو ہم کیول اسی سمے سمجھ سکتے ہیں جب ہم ان کی امامت کے آرمبھک کال سے لے کر ان کی شہادت تک کے سمے کے حالات کا ادھین کریں۔
دوستو، واسطو میں یہ کام وہی سنگھرش ہے جس کو اماموں نے اپنے جیون کال میں اپنایا تھا۔ یہ سنگھرش 250 ورشوں تک ویبھن شیلیوں میں جاری رہا، جس کا مول ادیش لوگوں کو شدھ اسلام کے بارے میں وستار سے بتانا، پوتر قرآن کی صحیح ویاخیا کو لوگوں کو بتانا، تاکہ لوگوں کے سامنے ایشوری دھرم کا صحیح سوروپ سامنے آئے۔ اس کے ساتھ ہی ان کا ایک کام یہ بھی تھا کہ ایشوری مارگ درشن اور ایشوری ستا کی استھاپنا کے لوگوں کو تیار کرنا تھا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ادیش تھا۔ یہی سنگھرش کی ویاخیا اتیاچار کو کسی بھی استھتی میں सहन न करने जैसी बातों को इमाम ने अपने जीवन में व्यवहारिक करके दिखाया। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम ने अपने काल के परिस्थितियों के कारण संघर्ष को खुलकर अंजाम नहीं दिया। इस दौरान शियों से संपर्क स्थापित करने के लिए उन्होंने एक ऐसा नेटवर्क स्थापित किया था जिसमें अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से वे लोगों की समस्याओं का निदान करते थे।
इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के साथ हारून का व्यवहार विरोधाभास पर आधारित था। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि हज के दौरान हारून ने इमाम का बहुत अधिक सम्मान किया, जबकि अगले हज की यात्रा पर इमाम को जिला वतन करने का आदेश जारी किया। कभी वह नर्म व्यवहार अपनाकर वह शियों को जेलों से आजाद कर देता, लेकिन कुछ समय बाद इसी शासक का व्यवहार इमाम और उनके चाहने वालों के बारे में बिल्कुल ही बदल गया। अब उसने इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम को कैद करने का आदेश जारी कर दिया। कई वर्षों तक इमाम को जेल में रखने के बाद इसी शासक ने जहर देकर इमाम को शहीद कर दिया।
हालांकि हारून रशीद के मुकाबले में इमाम काजिम अलैहिस्सलाम का व्यवहार अन्य लोगों के लिए एक पाठ सिद्ध हुआ। इस बात को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सुन्नी मुसलमानों के एक इमाम इमाम शाफी ने वक्त के खलीफा के मुकाबले में संघर्ष आरम्भ कर दिया। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम का शुभ जन्मदिवस और इसी प्रकार से अन्य महापुरुषों के जन्मदिवस एक प्रकार से महान लोगों के सम्मान के अर्थ में होते हैं। इन महापुरुषों ने हमें सिखाया कि जीवन केवल ईमान और प्रेम के आधार पर ही सुखद हो सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष जरूरी है। ये वो जिम्मेदारी है जिससे कोई भी स्वयं को बचा नहीं सकता। दोस्तों, एक बार फिर इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर आप सबकी सेवा में हार्दिक बधाई पेश करते हैं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। ईरान भ्रमण।
दोस्तों, कार्यक्रम ईरान भ्रमण की कन्या कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में हम एक बार फिर अर्दबिल प्रांत की सुंदरता पर प्रकाश डालेंगे। स्वाति और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार करें।
सामान्य रूप से शहरों के बाजारों में पर्यटक अधिक जाते हैं और अर्बिल का शुमार ऐतिहासिक बाजार भी पर्यटन के दृष्टि से इस शहर के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल में होता है। अर्बिल का बाजार शहर के केंद्र में स्थित है, इसलिए ये बाजार पर्यटकों में विशेष महत्व रखता है। ये बाजार ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत प्राचीन है और इसकी वास्तुकला भी पारंपरिक वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना पेश करती है। इस बाजार में भी दूसरे बाजारों की भांति रास्ते, सरायखाने, मस्जिद और गर्म रखने के स्थान भी हैं। अर्दबिल का बाजार ऐतिहासिक दृष्टि से अपनी मिसाल आप है।
कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि अर्दबिल का बाजार सल्जुकी शासन काल में बना था। कुछ इतिहासकारों ने अर्दबिल के बाजार को क्रॉस की शक्ल में बताया है, जिसके बीच में मस्जिद स्थित है। अर्दबिल के बाजार में सन 7वीं और 8वीं हिजरी कमरी में काफी चहल पहल थी, किंतु इसकी असल रौनक सफवी शासनकाल से संबंधित है। इस काल में चूंकि अर्दबिल सफवी बादशाहों के लिए विशेष महत्व रखता था, इसीलिए धार्मिक केंद्र शेख सफीउद्दीन अर्दबिली और अन्य सफवी राजाओं का मकबरा इस शहर के बाजार में स्थित है, और यही वजह है कि यह विशेष महत्व का स्वामी है। वर्तमान समय में इस बाजार का मौजूदा ढांचा सफवी और काजारी शासनकाल की धरोहरों की गाथा सुनाता है।
इस बाजार में असली रास्ते पीर अब्दुल मलिक के रास्ते, कैसरिया रास्ता, जूते बनाने वालों के रास्ते, दासों के रास्ते, सुनारों के बाजार, घोड़ों की जीन बनाने वालों के बाजार, रुई बेचने वाले, तांबा बनाने वालों, चाकू बनाने वालों, लोहार, हाजी मिर्जा के सूखे मेवे, सराय गुलशन, सराय वकील, सराय नू या जंजीर लू, सराय हाज अहमद, सराय हाज शकर, सराय मजीदिया, सराय इमाम जुआ, सराय दोगर्ची इत्यादि की ओर संकेत किया जा सकता है।
सारा बाजार गुंबद नुमा भाग से घेर दिया गया है, और बाजार में बनी दुकानों में प्रकाश उसमें बनी खिड़कियों से आता है, और इन सब दुकानों पर गुंबद बने हुए हैं। केसरिया नामक बड़ा बाजार बाजार का सबसे अहम हिस्सा है। इस भाग में एक अंडाकार गुंबद बना है जो सादा सा है। इमारत की चौड़ाई निचले भाग में 12 मीटर और लंबाई लगभग 13 मीटर है। यहाँ पर इस बात का वर्णन जरूरी है कि इमारत के निचले भाग में दुकानों में कोई स्तंभ नहीं है, और इस चीज को पूरे बाजार में देखा जा सकता है। अर्दबिल के ऐतिहासिक बाजार की हालिया दिनों में देश के सांस्कृतिक धरोहर संस्था की ओर से मरम्मत की गई है, और 1985 में इसे राष्ट्रीय धरोहर की सूची में पंजीकृत किया गया है।
अगर आप अर्दबिल की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो शेख जिब्राइल के मकबरे की यात्रा अवश्य करें। ये अर्दबिल के ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है जो अर्दबिल के कुल खुरान मोहल्ले में स्थित है। शेख अमीनुद्दीन जिब्राइल, शेख सफीउद्दीन इसहाक अर्दबिली के पिता और सफी शासन श्रृंखला के पितामह हैं। जिस जगह ये मकबरा बना है वो बहुत बड़ा इलाका है और दूर दूर तक फैला हुआ है, और ये इलाका बाग शेख के नाम से मशहूर है, और सन 1030 हिजरी कमरी में इसका निर्माण हुआ है। इस इमारत में हाल, आंगन, बरामदे और कई कमरे हैं।
बागे शेख में कई कब्रें भी मौजूद हैं, जिन पर बहुत ही सुंदर डिजाइनें बनी हुई हैं। इस इमारत का प्रांगण 4 कोने वाला है और इसमें प्रवेश और निकासी द्वार हैं। मकबरे का बाहरी भाग बहुत ही सुंदर है, क्योंकि यह सुंदर ईंटों से बना है। इमारत की छत समतल है और बीच में ईंट का एक गुंबद बना हुआ है। इस इमारत की सुंदरता में 4 चांद गुंबद और बरामदे में हुई मुनब्बतकारी की वजह से लग जाता है, और कलाकारों ने इसे बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया है।
लकड़ी के बने प्रवेश द्वार पर भी मुनब्बतकारी की गई है और बहुत ही सुंदर ढंग से शेर लिखे गए हैं। सैयद अमीनुद्दीन जिब्राइल नामक मकबरे में जो ईरानी इस्लामी वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना पेश करती है, बहुत ही सुंदर वास्तुकला, टाइल्स के सुंदर काम, प्लास्टर ऑफ पेरिस और सुंदर डिजाइनों को देखा जा सकता है। जब आप मकबरे में दाखिल होते हैं तो आपको बीच में ही लकड़ी का एक बक्सा नजर आता है। दीवारों पर दूर दूर तक टाइल्स का काम किया गया है। इसमें प्रयोग की गई टाइल्स नीले और फिरोजी रंग की है, जबकि गहरे नीले और सुनहरे रंग की टाइल्स भी आपको नजर आएगी।
टाइल्स के ऊपर कूफी लिपि में लिखावट आपकी नजरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। मकबरे की दीवारें बीच में खाली दो दीवारों से बनी हुई है, जो ईरानी कला की एक बेहतरीन मिसाल पेश करती है। मकबरे पर बने गुंबद पर किया गया मुकर्नस सफवी काल की वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना पेश करता है।
अर्दबिल शहर में भी ईरान के दूसरे शहरों की भांति ऐतिहासिक घर बने हुए हैं, जैसे आगाजादे अर्दबिल की इमारत, मीर फत्ताही का घर, वकीलु रिया का घर, मुनाफजादे का घर, खादिम बाशी का घर, हाज यूसुफी का घर, खलीलजादे का घर, खाने शरीयत, स्वर्गीय मरुज का घर और सैयद हाशिम इब्राहिम का घर, जो सामान्य रूप से प्रांत के पर्यटकों के आने जाने का केंद्र है। दोस्तों, हम आपको इन घरों को देखने की एक बार फिर दावत देते हैं।
आकाजादे अर्दबिल की इमारत का निर्माण काजारी शासनकाल में हुआ था और यह कापू शहर के मैदाने आली में स्थित है और यह उत्कृष्ट वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना पेश करती है। आकाजादे अर्दबिल की इमारत उन 7 इमारतों में से एक है जो काजार शासनकाल के प्रसिद्ध व्यापारी हौज इस्माइल आका ओफ की है। इस इमारत में मुख्य हॉल, दहलीज, नशेमन, संदूक खाना, स्नानघर, रसोईघर, दालान, छोटे बड़े हॉल और 2 छत हैं। इस इमारत में इसी तरह पत्थर का एक हौज भी है, जिसके बीचों बीच एक फव्वारा बना हुआ है। वर्ष 2007 में इस इमारत को ईरान की राष्ट्रीय धरोहर की सूची में पंजीकृत किया गया और वर्तमान समय में इसे पारंपरिक रेस्तरां के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।
अर्दबिल का मफाखिर दीनी म्यूजियम भी पर्यटन का एक अन्य आकर्षण है। अर्दबिल शहर में बहुत से प्रसिद्ध धर्मगुरु जन्मे हैं। यही वजह है कि इस प्रांत के लोगों में धार्मिक मजबूती और धर्मपरायणता कूट कूट कर भरी हुई है। प्राचीन काल में खाने मीर फत्ताही का घर म्यूजियम था, जिसे म्यूजियम ही बना दिया गया। मीर फत्ताही का ऐतिहासिक घर 1250 हिजरी कमरी में निर्मित हुआ था और पहलवी प्रथम काल में इसका प्रयोग लड़कियों के स्कूल के रूप में किया जाता था। इस इमारत को भी बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है और वर्ष 2002 में इसको राष्ट्रीय धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया।
इस इमारत की डिजाइनिंग प्रसिद्ध डिजाइनर आगा हसन मर्दाने अर्दबिली ने किया और इसमें प्रसिद्ध धर्मगुरुओं की तस्वीरें हैं, ताकि दुनिया के लोग इन महापुरुषों को याद रखें। अर्दबिल की असली पहचान के लिए आपको इस शहर के म्यूजियम को देखना जरूरी है और हम अर्दबिल के एक अन्य म्यूजियम के बारे में आपको बताने जा रहे हैं।
ये अर्दबिल का एक अन्य म्यूजियम है, जो यहाँ के लोगों के रहन सहन और जीवन शैली को बयान करने का बेहतरीन नमूना है। इसी तरह स्थानीय खानों और पकवानों के बारे में भी म्यूजियम से जानकारी हासिल की जा सकती है। ये म्यूजियम जहिरुल इस्लाम आका नकी के ऐतिहासिक स्नान गृह के स्थान और मैदान अली काबू पर स्थित है। सफवी शासन काल से पहले भी ये स्थान और 7वीं हिजरी कमरी के दूसरे अर्ध में सार्वजनिक स्नान गृह के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है।
इस स्थान पर 33 तरह की प्रतिमाएं हैं, जिन्होंने अर्दबिल प्रांत के स्थानीय लोगों का वस्त्र पहनाया गया है और इन सबके हाथों में एक तख्ती भी है, जिस पर इस क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान के बारे में जानकारियां लिखी हुई हैं। इस स्नानघर को इल्खानी शासनकाल में जहीरुल इस्लाम नामक व्यक्ति ने बनाया था और 200 साल के बाद इस इमारत में कुछ भागों की वृद्धि की गई। यह स्नानघर 2 नामों से जाना जाता है और इसकी वजह यह है कि आका नकी मोथ मेनुरियाया नामक व्यक्ति ने इसका पुनर्निर्माण किया और इसकी मरम्मत कराई थी।
वर्ष 1999 में इस स्नानघर को सांस्कृतिक धरोहर द्वारा खरीदा गया और इसकी प्राचीन बनावट की रक्षा करते हुए इसको म्यूजियम बना दिया गया। इस म्यूजियम का प्रवेश द्वार बहुत ही सुंदर है और उसके बीच में अष्टकोणीय पत्थर का हौज बना हुआ है। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दें, खुदा हाफिज़।
श्रोताओं, ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। सभा के अंत में मुख्य समाचारों का सारांश एक बार फिर सुन लें। ईरान ने कहा है कि अमेरिका मिसाइल ताकत और क्षेत्रीय प्रभाव पर वार करने के लिए परमाणु समझौते को हाईजैक करना चाहता है। ईरान ने कहा है कि वो अफगानिस्तान में शांति व सुरक्षा चाहता है। इराकी सांसदों ने कहा है कि अमेरिका का निकलना बहुत जरूरी है, वो आतंकवादियों को हथियार दे रहा है। यूरोपीय सांसदों ने भारत नियंत्रित कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति पर चिंता जताई है। श्रोताओं, ताजा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए। वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। व्हाट्सएप पर हमारा संपर्क नंबर है 00989035065492। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। तो श्रोताओं, इसी के साथ ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। अब हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।